ओम शांति। आप सबने अपना परिचय सुन लिया, आप कौन हैं? है जो है वो हाथ उठाए, पक्का बोल रहे हैं, देख रहा है बाबा। भागवत में प्रभु प्रेम का वर्णन है, हमें बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं, बच्चे मैं माशुक हूं तुम आशिक हो। कभी आशिक बनकर याद किया है? आशिक को याद करना नहीं पड़ता है, याद आती है, याद रहती है। उसको याद करना मुश्किल नहीं है, उसे भूलना मुश्किल है। मैं बाबा पर आशिक हूं। आज बाबा के कमरे में जाएंगे तो बाबा से कहना, बाबा मैं आप पर आशिक हूं और मैं आप पर बलिहार हूं और मैं आप पर कुर्बान हूं और मैं आप पर न्यौछावर हूं। और मैं आप पर फिदा हूं। आज इसकी माला जाप करना हर टाइम। मैं कौन हूं? मुझे बाबा ने पसंद किया है, चुना है इस सारे विश्व में से। कहकर देखो, बाबा मैं आप पर कुर्बान हूं, बलिहार हूं, आप पर फिदा हूं। ये विशेषता जिसके अंदर होगी उसकी नजर दूसरे पर नहीं जाएगी। आज दुनिया तो कलयुग है, वहां भी जिससे संबंध जुट जाए, शादी हो जाए, वो चाहेंगे कि इसकी नजर दूसरे पर ना पड़े, वो भी चाहेंगे। कलयुग के पतित मनुष्य भी ये चाहता है। पूरा भागवत भरा है, गोपियां इतनी मगन थी, प्रभु प्रेम में इतनी मगन थी कि उन दिनों में माइक नहीं थे, कहां मुरली बजती थी और घर बैठे काम करते सुनाई देती थी। कोई माइक लगा था क्या? कोई माइक पर मुरली चलती थी क्या? उस जमाने में मुरली नहीं थी, माइक नहीं थे। ये अंतर मन की आवाज, कहां मुरली बजती थी, कहां काम करते भी मुरली सुनाई देती थी। कहते एक आंख में काजल लगाया और मुरली की आवाज सुनाई दी तो दूसरी आंख में काजल नहीं लगाया, भाग गई। यही भागवत में वर्णन है। जो काम कर रही थी उसे पूरा करके नहीं गई, आवाज सुनाई दी और छोड़ के भाग गई, उसी को गोपी कहा गया। उसी का नाम है गोपी, जो प्रभु प्रेम में इतनी मगन थी। कहते हैं एक बार मीरा एक महात्मा जी से मिलने गई। वो महात्मा जी महिलाओं को अपने आगे नहीं बैठाते थे, पीछे बिठाते थे। आगे पुरुष बैठते थे, पीछे महिलाएं बैठती थी। तो मीरा ने मिलने का समय मांगा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं महिलाओं से नहीं मिलता, मैं नारियों से नहीं मिलता। तो मीरा ने जवाब दिया, अपने को पुरुष कब से समझ बैठे? पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब नारियां ही है, और कोई पुरुष है ही नहीं, वो तो एक ही है सिर्फ, बाकी तो सब नारियां हैं। आप अपने को पुरुष कब से समझ बैठे हैं। उनकी आंखें खुल गई कि मीरा को इतना ज्ञान है। इसलिए भागवत में गायन है कि जब रास हो रही थी वहां पर एक कृष्ण ही थे और बाकी सब नारियां थी, सब गोपियां थी और कोई पुरुष नहीं था। ये भी एक दृष्टि है। सभी आत्माएं हैं, सभी गोपियां हैं, सभी उनकी सजनी है, सभी उन पर आशिक है, क्योंकि गोपियां खींची चली आती थी। कोई बुलाने नहीं जाता था उनको। भागवत में ही वर्णन आता है, गोपियां स्नान कर रही थी और भगवान ने उनके वस्त्र हरण कर लिए। ऐसे यहां देखा जाए तो इसमें कोई चरित्र की बात नहीं है, लेकिन बाबा ने बताया है, भगवान आया उसने देह अभिमान का वस्त्र हरण कर लिया। मैं शरीर हूं, ये देह वस्त्र है ना, ये देह अभिमान का वस्त्र चुरा लिया, आत्मा का अनुभव कराया। ये चरित्र के रूप में गाया गया क्योंकि ये देह अभिमान की बात नहीं है, ये शारीरिक वस्त्रों की बात नहीं है, ये आत्म अभिमानी स्थिति की बात है। आप सबने यज्ञ की हिस्ट्री सुनी है, जब श्री बाबा आए, बाबा के तन में प्रवेश हुए तो घर घर से सब भाग भाग के आए, किसी को निमंत्रण कार्ड नहीं गया, कोई पर्चा नहीं छपा, किसी को बताया नहीं कि भगवान आया है, सब भाग भाग के आए। हमारी वो भागने वाली लगन चाहिए। जो बाबा को पसंद है वही मुझे पसंद है, जो बाबा चाहते हैं वही मुझे करना है, उनको खिलाए बिना नहीं खाना है। बाबा का भक्ति मार्ग का गायन हम सुने हैं कि भक्ति मार्ग में जब बाबा थे तो मूर्ति भी अपने पॉकेट में रखते थे, जल पीते थे तो भी भोग लगाते थे। वो भक्ति मार्ग का प्रेम था। अभी तो हम बाबा के हो चुके हैं। जब बोलो जोर से। अभी तो मन में कई इच्छाएं बैठी हुई हैं, डिग्री लेना है तो डॉक्टर बनना है, तो इंजीनियर बनना है, तो ये पोस्ट लेनी है, तो वो पोस्ट लेनी है, है ना इच्छाएं, है या नहीं? नहीं। और जिनको है वो हाथ उठाइए। देखिए बाबा ने क्या कहा, मुझे सत्ययुग में विश्व का राज्य लेना है, बस ये इच्छा मन में रखो। 21 जन्म, एक जन्म नहीं। यहां हम डॉक्टर भी बन जाएंगे, हमारी एक बहन है उसने मेडिकल की पढ़ाई शुरू किया, 5 बरस की पढ़ाई है, 2-2.5 बरस हो गया, उसके मन में आया एक मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, दुनिया में इतने डॉक्टर हैं, कोई बीमारियां घट थोड़ी रही है, घट रही है, बीमारियां तो बढ़ती जा रही है, कोई इलाज थोड़ी हो रहा है। अगर बीमारियां घटती तो डॉक्टर कम होते, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि बीमारियां बढ़ रही हैं। एक मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट से भी रुपया मिला था, उसके अकाउंट में 10 लाख रुपया गवर्नमेंट का आया हुआ था, वो भी वापस किया, वहां भी कैंसिल किया, मेरे को नहीं पढ़ना है। और आई सेंटर पर, सेंटर पर आई तो उसने ऐसा सोचा कि जैसे कि मैं कोई जॉब करने जाती हूं तो 10 बजे से शाम 5 बजे तक 6 बजे तक तो सवेरे नाश्ता वास्ता कर लेती, 10 बजे सेंटर से निकल जाती, बड़े बड़े वीआईपी के घर में महिलाओं को कोर्स कराती जाकर, एक घर में कराई, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, वो लौट कर आती शाम को 6 बजे रोज। तो जिनों को कोर्स कराती, उस घर के जो पुरुष लोग थे वो रविवार को मिलते, उनको रविवार को कराती। इस तरह से बहुत सेवा की, मन का डॉक्टर बन गए, तन की बीमारियां तब ठीक होगी जब मन ठीक होगा, अगर मन ठीक नहीं होगा तो तन के रोग नहीं जाएंगे। बाबा ने हमारे को तन से भी निरोगी बनाया, मन से भी सदा खुशहाल, प्रभु प्रेम में मगन हमारी पहचान है, प्रभु प्रेम में मगन। कहते हैं मुरली एक ऐसी चीज है जो भगवान ने अपने हाथों में ली हुई है, दोनों हाथों में। कहते हैं गोवर्धन पर्वत उठाया एक उंगली से और मुरली उठाई अपनी सारी उंगलियों से, 200 उंगलियों से मुरली दिखाते हैं ना, 200 उंगलियों से। क्या विशेषता थी मुरली में? मुरली बांस की होती है, बांस की होती है ना मुरली, अंदर कुछ भी नहीं, कुछ होता है तो खाली कर देते हैं उसको, तब मुरली के काम आती है। बांस, मुरली बांस की, अंदर से खाली ऊपर से छेद वाली, कई छेद होते हैं उसमें, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। बजाने वाले की खूबी है कि सातों सुर निकालता है उससे। तो हम भगवान की मुरली बन जाएं, अंदर से अभिमान निकल जाए, खाली मैं हूं, मैं कुछ, मैं समझ लो कि मैं मुरली हूं, अंदर से पूरा अभिमान मिट जाए, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस बाबा मैं आपकी हूं। और कई कमियां भी हैं, पुरानी दुनिया से आए हैं, लेकिन बाबा के हाथों में हूं, उनके हाथों में हूं, वो जैसे बजाए जैसे चलाए। अब बाबा ब्रह्मा बाबा मुरली बन गए ना, श्री बाबा ने बजाई ना, अपना अहम मिटा दिया, मैं कुछ हूं, मेरी भी कोई हस्ती है, अहम मिटा दिया, बस आपके हाथों में हूं, जैसे चलाओ। तो मुरली उनकी पहचान हो गई, मुरलीधर कहलाया, मुरली पहचान बन गई। तो बाबा कहते ऐसे परम सौभाग्यशाली बच्चे, इस दुनिया की कोई पोस्ट लेने की इच्छा नहीं, कोई पद पाने की इच्छा नहीं, अगर योग्यता है पढ़ाई की तो वो हम इस सेवा में लगाएं, अपने गुण को, अपनी कला को, अपनी विशेषता को हम ईश्वरीय कार्य के अंदर अर्पण करें, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अपने आप को ऐसा वैल्यूएबल बनाना, अर्थात अंदर से अपना अभिमान मिटा देना और बाबा के आगे पूर्ण रूप से समर्पित, समर्पण भाव, मैं समर्पित हूं, समर्पण भाव। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो अपनी शक्ति से काम नहीं करते हैं, अपनी शक्ति से ज्यादा काम करते हैं, तब बाबा की पूरी मदद मिलती है। दुनिया में बहुत तरह की रेस होती है, दौड़ते हैं ना लोग रेस में, पूरी शक्ति से दौड़ लेते हैं, जब उनकी पूरी शक्ति खत्म हो जाती है तो अपनी मानसिक शक्ति से दौड़ते हैं, तब विजयी होते हैं, केवल तन की शक्ति से विजयी नहीं होते। तन जब थक जाता है उसके बाद भी दौड़ते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको कहते हैं समर्पण, इसको समर्पण कहते हैं। समर्पण का अर्थ ही है बाबा की शक्तियां हमारे में काम कर रही है, ये है समर्पण महता, इसको समर्पण भाव कहा जाता है, ये समर्पण भाव है। हमारी नजर अपने आप को बनाने पर है, मैं वो काम करूं जो बाबा को पसंद हो, मैं ऐसा भोग बनाऊं जो बाबा को पसंद हो, मैं ऐसे शब्द बोलूं जो बाबा को पसंद हो, मैं ऐसे कार्य करूं जो बाबा को पसंद हो, उनकी पसंद ही मेरी पसंद है, ये नहीं कि जो मैं चाहूं वो बाबा मुझे कहे। हाँ उल्टा हो गया ना, जो मेरी पसंद वही मुझे कहे, नहीं जो बाबा की पसंद हो वो करने को मैं तैयार हो जाऊं। तो वो हमको कहीं से निकाल करके ले आएगा। भागवत के अंदर वर्णन आता है यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद यमुना में गिर गई। आजकल अगर कोई गेंद नदी में गिर जाए तो उनके पास कई गेंदें रखी रहती हैं, दूसरी गेंद उठा के ले आएंगे। लेकिन वो कैसी गेंद थी कि वही गेंद निकालने के लिए यमुना में जाना पड़ा अंदर, दूसरी गेंद नहीं थी कोई। कहते हैं उस गेंद को लाने के लिए अंदर श्री कृष्ण को जाना पड़ा। जो अंदर गए बिल्कुल गहराई में तो क्या देखा अंदर जाकर, वो गेंद काली दह नाग के मुंह में थी, उसके कब्जे में थी, उससे युद्ध करना पड़ा, उस गेंद को छुड़ाने के लिए युद्ध करना पड़ा। और युद्ध में जब वो हार गया तब उसने कहा कि मेरे मस्तक पर बैठो, मैं आपको बाहर ले चलता हूं। तो दिखाया है कि काली दह के सिर पर डांस करते हुए ऊपर आए, चित्र देखते हैं हम। हम जानते हैं वो गेंद ये सृष्टि गेंद दूसरी नहीं है कि कोई दूसरी ले आएगा। ये गेंद विषय वैतरणी नदी में गिर गई है, इसको निकालने के लिए भगवान को इसी दुनिया में आना पड़ा। आके क्या देखा, ये सारी सृष्टि माया के कब्जे में है, ये माया के वश है, उसे छुड़ाना भी आसान नहीं है। फिर माया से युद्ध करना सिखाया और उसके कब्जे से छुड़ाया, और तब उसका मालिक बन गए, वो उसके अधीन हो गया। तब माया जीते जगत जीत कहलाए, माया जीते कहलाए। तो बाबा आया है इस विषय वैतरणी नदी से, इस सृष्टि रूपी गेंद को छुड़ाया है, पार ले जा रहे हैं। हर एक आत्मा के अंदर वो मायावी संस्कार भरे हुए हैं, हर एक आत्मा के अंदर वो मायावी संस्कार भरे हुए हैं। उन संस्कारों से मुक्त किया। संस्कार कैसे बनते हैं, संस्कार का आधार क्या है, ज्ञान हमने सुन लिया उतने से संस्कार नहीं बनेगा, दूसरे को सुना दिया तो भी संस्कार नहीं बनेगा। ज्ञान की एक एक पॉइंट मेरे कर्म में आई, मेरे व्यवहार में आई, मैंने उसे यूज किया, ज्ञान युक्त कर्म हुआ। जब ज्ञान युक्त कर्म किए तब कर्म से संस्कार बनता है, बिना कर्म के संस्कार नहीं बनता। इसलिए बाबा कहते ज्ञान के एक एक पॉइंट को याद करो, एक एक पॉइंट को यूज करो, ज्ञान का मनन करो, चिंतन करो, एक एक बात को याद करो और जो बाबा ने सही रूप दिखाया है सृष्टि का, सृष्टि क्या है, एक एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखो, सृष्टि को ड्रामा की नजर से देखो, सब रिश्तेदारों को कर्मों के हिसाब किताब से रिश्ते जुटे हैं उस नजर से देखो, अपने ऊंचे लक्ष्य को देखो, मुझे पाना है नर से नारायण बनना, इतना आसान है क्या, क्या समझा है? हाँ, लक्ष्मी बनना इतना आसान है क्या? हाँ, साधना है, हाँ साधना है। सहज योग तो बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि बाबा के बन गए, उनकी बारंबार याद आती है, याद करना नहीं पड़ता उनके लिए सहज योग। जो दीवाने बन गए, जो मस्ताने बन गए, जो उन पर सीधा हो गए, उनके लिए योग सहज, उनके सिवाय कुछ सोचता ही नहीं। जब बात करेंगे उन्हीं की करेंगे, देखेंगे तो उनको ही देखेंगे, गुण गाएंगे तो उनके ही गाएंगे, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस ऐसी मस्ती चढ़ जाए, ऐसा मगन हो जाए जिसमें हमें यह अनुभव होता है हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कोई साधना नहीं कर रहे, कोई तपस्या नहीं कर रहे, लेकिन सारी दुनिया से छुड़ा दिया, हम इस दुनिया में बैठे हैं, इस दुनिया के काम के नहीं है, कोई हमको याद नहीं करेगा, दुनिया में रहने वाला, घर में कोई लौकी, घर में कोई काम होगा हमको याद नहीं करेगा, उसके लिए दुनिया में बैठे हुए लोगों को याद करेगा, जान गए ये हमारे काम के नहीं है। अब हम भगवान के काम के हैं, उनके कार्यों को पूरा करने वाले हैं, हर समय लगन लगी हुई है, उम्र नहीं देखनी है। हमने कई कुमारियों को देखा है, बड़ा डिग्री पाने का शौक, डिग्री पाने के बाद जॉब का शौक, जॉब भी कर लिया, जब जॉब कर लिया किसी से दिल लग गई, पहले ब्रह्मा कुमारी कहलाती थी फिर शादी कर ली, एक माया फिर दूसरी माया, फिर इसलिए इच्छा को लोगों ने माया कहा है, एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी, दूसरी पूरी नहीं हुई, तीसरी, तीसरी के बाद कुछ चौथी उत्पन्न हो गई, रास्ता ही बदल गया, अपने को बचाना, अपने प्रति शुभ भावना रखना, अपनी रक्षा करना, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहना, उसके बाहर नहीं निकलना। बाबा कहते हैं बड़े बड़े लोग जहां जाते हैं उनके सिर पर कोई छतरी लेके चलता है, बड़ी बड़ी छतरी, तुम बहुत विशेष आत्माएं हो, तुम्हारे ऊपर हर जगह बाबा की छत्र छाया है, तो हर समय उनकी छत्र छाया के अंदर ही रहना, कभी भी उसे बाहर नहीं निकलना। बाबा ने नहीं कहा तुम्हारे पास ये डिग्री होगी तब तुम मेरे पास आ सकते हो, कहा है हमारी दादियां इतना अपने अनुभवों की क्लासेस करा रही हैं, कितनी किताबें बन गई हैं, पूछो तो कितना डिग्री लिया है लौकिक, कोई उसकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए वैराग आने की जरूरत है, त्याग, वैराग, त्याग करना ना पड़े, अंतर से भाव जागृत हो, त्याग का भाव जागृत हो, त्याग करने की भावना पैदा हो, उसकी आवश्यकता है। कुमारियों के लिए बहुत सहज है, बस मेरा एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, बहुत सहज है। ये संसार तुच्छ, पतित, कब्रस्तान दिखाई दे, नरक, रोज बाबा कहते हैं, ये बच्चे दुनिया क्या है, रोज बाबा लंबी लिस्ट सुना देते हैं, वो भी याद करने की जरूरत है। बच्चे विनाश होने वाला है, जो कुछ इन आंखों से देख रहे हो नहीं रहेगा, रोज बाबा याद दिला देते हैं। और हम इस शरीर में कब तक है इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जो करना है कर लो, जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। कुमारियां धन कमा करके लाएं बाबा नहीं चाहते, कुमारियां जिनकी सेवा करेंगी वो अपार धन लगाएंगे सेवा में, उसका कमीशन मिलेगा मिलेगा ना। हाँ बाबा कहते अनेक अनेक आत्माओं ने आपके त्याग तपस्या को देखकर धन लगाया तन लगाया, हाँ उसका भी कुछ शेयर मिलेगा, बजाय इसके कि हम कमा करके लाएं। बाबा को कुमारियों से धन की कोई आशा नहीं है, हमारा जीवन रूपी धन यही हमारा धन है, समय भी धन है, बुद्धि भी हमारी ज्ञान रत्नों से भरपूर है, ये हमारी ईश्वरी सेवा में बाबा स्वीकार करें, हमारे अंदर समर्पण भाव जगे, कहीं भी हैं कहीं अपने आप को छूट न दें, हमेशा वाइट ड्रेस में रहें, ये भी रक्षा के पोशाक है, रक्षा की पोशाक है, हमेशा वाइट ड्रेस में, कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहने, वो भी रक्षा करेगा। कहीं किसी के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते, वो भी रक्षा करता है। कभी हमारी मुरली पढ़ाई मिस नहीं होगी, वो भी रक्षा करता है। तो जितने हमारे नियम हैं, हमारे रक्षक हैं, वो हमारी रक्षा करने वाले हैं, हमारे बॉडीगार्ड हैं। इसे नियमों का कड़ाई से पालन करना, नियमों को कड़ाई से पकड़ना ये आवश्यक है। बाबा के साथ की अनुभूति जबरदस्त रहनी चाहिए। एक बहन का मैंने अनुभव सुना, उसकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गई, टेस्ट हुए, रिपोर्ट में आया कैंसर हो गया है। वो घर आई, उसने महसूस किया कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, फील हुआ उसको, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसे कहना शुरू किया, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उठते बैठते चलते यही संकल्प करने लग गई, आपने मुझे ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर टाइम उठते बैठते सोते चलते यही चिंतन करने लगी, कोई दवा नहीं खाई। एक महीना बीता, दो महीना बीता, ढाई महीना बीता, फिर गई डॉक्टर के पास, फिर दोबारा टेस्ट हुए, रिपोर्ट में आया कैंसर नहीं है। किसने ठीक किया? संकल्प शक्ति ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक कर दो नहीं कहा, बीमारी नहीं सुनाई। आज किसी से पूछो कैसे हो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, रिजल्ट में क्या होगा? होगा, बढ़ेगा। और उसने संकल्प क्या किया? ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, आपने ठीक कर दिया। तो क्या हुआ? शरीर में बीमारी थी, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, संकल्प ने ठीक करना शुरू कर दिया, शरीर ने अंदर अंदर ठीक करना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं समस्या का चिंतन नहीं करें, परिस्थिति का चिंतन नहीं करें, केवल बाबा का शुक्रिया करें। अपने ऊपर भी विश्वास, कईयों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि आज तो हम कदम ऊपर आगे बढ़ा लें, कल हम नहीं निभा सके तो निभा सकेंगे क्या? अपने में संशय, बाबा में भी हमको निश्चय है, अपने में भी निश्चय है, ड्रामा में भी निश्चय है। निश्चय बुद्धि, जोर से बोलो, विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयंती, हर कदम में विजय, हर कदम में सफलता का आधार है निश्चय। निश्चय वो शक्ति है, निश्चय वो शक्ति है, निश्चय से प्रैक्टिकल कार्य होगा। दादी ने एक बार हमें कहा कि शरीर को शाबाश दिया करो, बहुत मदद करता है, बहुत साथ देता है, कभी धोखा नहीं देता है, साथ दिया, इसको मदद की, इसको शाबाश दिया करो। और लोग क्या करते हैं, शरीर की शिकायत ही शिकायत करते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। दादी ने क्या सिखाया, शरीर को शाबाश दिया करो। एक भाई आए थे कहीं से, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, कहा कि मेरे कमर में दर्द हो गई। कई लोग आए मेरा हालचाल पूछने, मैं उठ नहीं सकता था, मेरे कमर में बहुत दर्द थी, जो था वो मैं सबको सुनाता रहा। जब सब चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी कमर मुझसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है, मैंने तुमको इतना साथ दिया, आज आराम कर रहे हैं तो मेरी शिकायत कर रहे हो। कहा मैंने महसूस किया कि कमर ठीक कह रही है, जब रात भर कहीं जगना पड़ा तो जगे, कहीं ज्यादा देर काम करनी पड़े तो भी कमर ने साथ दिया। कहा फिर मैंने कमर पे हाथ फेर कर इसका बहुत बहुत शुक्रिया शुरू किया, तुमने मेरी बहुत मदद की है, तुमने मुझे बहुत साथ दिया है, कभी भी धोखा नहीं दिया है, जब जैसा चाहा वैसा मेरे को सफलता दिलाई है, मेरे हर काम को पूरा किया है। कहा 15 मिनट तक मैं कमर में हाथ फेरता रहा और इसकी तारीफ करता रहा, तारीफ करता रहा, उसके बाद क्या देखा, दर्द गायब। फिर उसने कहा कई वर्ष बीत गए हैं, आज तक फिर मुझे कमर में दर्द नहीं हुई। इसका मतलब है शुभ चिंतन, शुभ दर्शन, श्रेष्ठ दर्शन, पॉजिटिव थिंकिंग कितना बड़ा काम करती है। इसी तरह से हमने जीवन प्रभु अर्पण किया है, और जिन्होंने अर्पण किया है वो दादियां हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। जब दादियों ने जीवन समर्पित किया था उनके सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, वो तो किसी को देखकर नहीं कह सकती थी देखो उसने भी जीवन बनाया, उसने बनाया, उनके सामने तो कोई नहीं था। उनका समर्पण भाव कितना श्रेष्ठ था। बाबा ही बाबा दिखाई देता था, ऐसा नशा चढ़ा हुआ था, ऐसी शक्तियां मिली हुई थी। हमारा निश्चय जितना प्रबल होगा, हमारा निश्चय जितना मजबूत होगा, उन शक्तियों की अनुभूति हमको यहां भी होगी। वो निश्चय का बल, निश्चय, नशा, तीसरा शब्द, निश्चय, नशा, तीसरा शब्द निश्चिंत। निश्चय है, निश्चय का नशा चढ़ा हुआ है, रिजल्ट निश्चिंत रहेंगे, कोई बात की चिंता नहीं, कोई बात का चिंतन नहीं, वो बल रहेगा, निश्चय का बल रहेगा, वो बल काम करेगा। ऐसा नशा बाबा ने एक बार चढ़ाया, रोज चढ़ाते हैं, रोज चढ़ा रहे, कितनी बड़ी मदद है, रोज याद दिलाते हैं। आज भी बाबा ने वरदान दिया, हर्षित चित्त, हर्षित मुख रहो, चित्त भी हर्षित, मुख भी हर्षित, हमेशा खुशी के गीत गाते रहो, खुशियां बांटते रहो, खुश रहो। जिसके मन में संशय आएगा, जिसको लगेगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आज बहुत लोग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं ये सोचकर कि बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, लाखों रुपया खर्चा होता है, इसे जमा करके रखो। जो बीमारी के लिए रुपया जमा करेगा उसके पास बीमारी आएगी कि नहीं आएगी, बताओ? वो तो आह्वान कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। बाबा ने सर्वस्व अर्पण कर दिया, सोचा कल कुछ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ हुआ ही नहीं। जो यज्ञ में थोड़ी कमी आई भी, वो तो बाबा ने सबका पेपर ले लिया और पास हो गए। तो नशा बहुत बड़ी चीज है, इसे याद रखना है। निश्चय रहेगा, निश्चय का नशा, रिजल्ट निश्चिंत। निश्चिंत नहीं है माना नशा नहीं चढ़ा है। किसके बने हैं, किसने अपना बनाया है, कौन आया है, कल भविष्य क्या है, वो हमको बता रहा है बच्चे कल क्या होने वाला है। आज भी नहीं, जो करना है अभी कर लो, अभी संकल्प कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने हमको महामंत्र दे दिया है, पाठ पढ़ा दिया है, माम एकम, बस सिर्फ एक मुझे याद करो, एक की लगन में मजग मगन, एक का पाठ पढ़ा दिया ना, एक बल एक भरोसा, एक की लगन में मगन, एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल स्थापन हो रहा है। एक का पाठ, दो का पाठ नहीं पढ़ाया, एक का पाठ पढ़ाया। इस तरह से मीठे बाबा ने एक एक बच्चे को इतना शक्तिशाली बनाया, इतनी पावर भर दी है। किसकी पावर भर दी? अपनी पावर, अपनी पावर बाबा ने बच्चों में भर दी है। हमें ऐसा महसूस होता है हम अपनी पावर से नहीं चल रहे हैं, हम परमात्म पावर से चल रहे हैं, परमात्म शक्तियों से चल रहे हैं। वो बल मिल रहा है, वो शक्ति मिल रही है। किसको मिलता है? बैठे बैठे अनायास खजाना मिल जाए, कहते हैं कितना लकी है, तो देखना है हम कितने लकी हैं। हमको भगवान ने अपना हाथ दिया, साथ दिया, हर संबंध से हमारा बना। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सखा भी है, दोस्त भी है, हाँ, हर संबंध से अपना बनाया। कम बात है, अब हमें जरूरत है कि हम उसके ऊपर ऐसे फिदा होकर, आशिक बनकर चलें और अनुभव करें। योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन बाबा मुझको याद करता है, बाबा मुझे खींच रहा है, मैं बाबा के सामने हाजिर हूं, ऐसी अनुभूतियां अंदर ही अंदर होती रहें। क्योंकि हम जिसको याद करते हैं वो भी हमें जरूर याद करेगा, हमारे संकल्प वहां पहुंचेंगे और बाबा को हमारी याद आएगी। ऐसा नहीं समझना कि बाबा हमें याद नहीं करता है। आप सभी यहां बैठे हैं, ये बाबा ने याद किया है उसकी रिजल्ट है ये। बाबा के याद किए बिना आप यहाँ नहीं पहुँचते। बाबा ने याद किया है आपको, यहाँ हाजिर किया है खजाने से भरपूर करने के लिए, माला माल करने के लिए। ये आपका प्रयास नहीं, ये बाबा का प्रयास है। और यहाँ जितना खजाना अपने अंदर भर लेंगे, शक्तियाँ लेकर कदम आगे बढ़ाएंगे, तो बाबा की मदद की अनुभूतियाँ होती रहेगी। ये भी नशा चाहिए, ये भी नशा चढ़ा हुआ रहता है। नशा उतरता थोड़े ही है, नशा खाने वालों को देखो कैसे चढ़ा हुआ रहता है। हाँ, हमारे लौकिक संबंधी, जब हम छोटी उम्र में बाबा के पास आ गए थे, तो हमारे जो लौकिक संबंधी थे, हाँ, एक बार उन्होंने हमें कहा कि दुनिया में अच्छे काम तो हम भी करते हैं, लेकिन करते ही रहें ऐसा नहीं होता है। किया छोड़ दिया, किया छोड़ दिया। आप भी करने लगे तो हम इंतजार कर रहे थे कि थोड़े दिनों में ये लोग आ जाएंगे वापस। लेकिन कौन सी शक्ति आपके पास है जो आप लोग आज तक लौटे नहीं? अच्छा काम कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। ओम शांति।